जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे श्री उडुपी कृष्ण भगवान की, श्री यरमल कृष्ण भगवान की, श्री वडमंडेश्वर बलराम जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब लोग समय पर सुबह आए। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तीर्थ यात्रा करना मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। भक्ति के 64 तत्वों का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में, और उन 64 तत्वों में से 6 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं जो करने ही करने हैं पालन। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। जिसके वजह से बाकी सारे तत्व जो है वो पालन करने में सहायता होती है। भक्तों के संग में हम जप करना सीखते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है भगवान के नाम का जप। पहले भक्तों का संग, दूसरा भगवान के पवित्र नामों का जप एवं कीर्तन, और तीसरा तत्व है श्रीमद् भागवत का पठन। श्रीमद् भागवत यानी भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र का वर्णन। तो और भी कोई शास्त्र होगा जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र का वर्णन है, वो भी श्रीमद् भागवत ही है। श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण और वैष्णवों के चरणों चरित्र का वर्णन है ही, लेकिन और भी कई ग्रंथ है, जैसे रामायण है और सारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, महाभारत भी है, तो वो श्रीमद् भागवत के ही बराबर है। मतलब शास्त्र जिसमें भगवत चरित्र और भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन दिया है। कितने तत्व हो गए? चौथा तत्व है भगवान के धाम में निवास करना। तो भगवान के धाम में अनेक प्रकार के निवास होते हैं। एक निवास है यहां पर ही जन्म होता है किसी का, तो ये रहता है, उसका जन्म ही यहां हो गया है, वो जन्म से ही धामवासी है। दूसरा व्यक्ति वो है धामवासी, जो धामवास करता है वो बाहर जन्म लिया हुआ है लेकिन धाम में आके रहता है, परमानेंटली यहां पर अपना घर बना देता है। और तीसरे प्रकार के जो धाम निवासी हैं वो हम सब हैं, वो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और कौन सा तत्व है? हाँ, अर्च विग्रह पद्धति। तो और पांचवा तत्व हो गया ना, ये फिफ्थ वन, भगवान के विग्रहों की पूजा। ये केवल मनुष्यों के लिए बताई गई है, भगवान के विग्रह को स्थापन करना, उसमें भगवान को प्रतिष्ठापना करना, भगवान को आह्वान करना, भगवान आह्वान होने के बाद उस मूर्ति में रहते हैं और उस मूर्ति के हम षोडशोपचार पंचोपचार से पूजा करते हैं। वो भगवान का सानिध्य हमें भगवान ने दिया है, भगवान के सानिध्य के हम योग्य नहीं है, फिर भी भगवान विग्रह के रूप में, हम उसको मूर्ति नहीं कहते, मूर्ति उसको कहते हैं जब तक इसको भगवान का आह्वान नहीं किया गया है, उसको आइडॉल कहते हैं, मूर्ति कहते हैं। लेकिन विग्रह उसको कहते हैं जिस मूर्ति में भगवान को आह्वान किया गया है, भगवान की प्रतिष्ठापना की गई है, उसको विग्रह कहते हैं, अर्च विग्रह, जिसकी हम अर्चना करते हैं। और छठवां तत्व है तुलसी की पूजा, क्योंकि इन सब चीजों से, भगवान के विग्रह से, तुलसी से, भगवान के निकट सान्निध्य का अनुभव होता है, भगवान का सान्निध्य हम निकट से अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें जो धाम वास है वो अभी हम सब लोग कर रहे हैं, और धाम वास में अपने आप ही भगवान के विग्रह का दर्शन हो रहा है, भगवान की कथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से हम सुन रहे हैं, भक्तों का संग हो रहा है, प्रसाद ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, से सब स्थाने हेरी ब्योमी प्रणयी भक्ति संगे। उन्होंने कहा है कि मनुष्य जीवन में पहले तो भक्त बनना जरूरी है, और भक्त बनने के बाद में भगवान के जो स्थान है जहां पर भगवान ने लीला किया है उनका दर्शन करना चाहिए। साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार, अधिक हो तो अच्छा ही है लेकिन नहीं होता है किसी को, तो कम से कम साल में एक बार सब कुछ काम बाजू में रखकर, सारे कर्तव्यों को बाजू में रखकर, परिवार को लेकर प्रणयी भक्ति संगे, यानी जो भगवान पर प्रेम करते हैं ऐसे प्रामाणिक भक्तों के संग में हमें भगवान के तीर्थ स्थानों को और धामों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जब केसरी टूर्स और कोई टूर्स के हम जाते हैं तो क्या करते हैं, वो आप बस रुकाते हैं, बोलते हैं यहाँ जाओ दर्शन करके आ जाओ, लेकिन उसमें कथा नहीं होती है। लेकिन प्रणयी भक्त जो प्रेम से आते हैं, वो भगवान के प्रेम की वजह से आते हैं, वो साइट सींग के लिए नहीं आते है ना। एक होता है साइट सींग, भाई 15 जगह देखना है, 5 दिन में 15 जगह देखना है, इसके पैसे ले लो और घुमा के लेके आओ, लेकिन ऐसे मत्था टेक दर्शन से कुछ लाभ नहीं होता है। लाभ तब होता है जब हम उस स्थान का महात्म्य सुनते हैं, वहाँ पर जो भगवान विराजमान है उनका गौरव सुनते हैं, वो कैसे आए, क्या लीला किया भगवान ने, उन भगवान के साथ उनके भक्तों ने क्या लीला किया, कौन से भक्त वहां पर आए, कौन से संत वहां पर आए, इसी को हम तीर्थ यात्रा कहते हैं, पिलग्रिमेज। और पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा भगवान के भक्तिमय जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक कथा प्राप्त हो जाए, समझी जाए। और जैसे आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आपको लगता होगा मैं कथा कर रहा हूं मुझे सब कुछ पता है, हाँ ये गलत फहमी है। मैं भी हर समय जब आता हूं तो नए नए जगहों का कथा ढूंढते रहता हूं, खोजते रहता हूं, पता करता हूं, फिर यात्रियों को बताता हूं। तो मेरी भी यात्रा चल रही है और आपकी भी यात्रा चल रही है, तो मैं भी यात्री हूं, आप भी यात्री हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है, मैं आपको बताता हूं, अगर हम हृदय से प्रामाणिक होंगे ना, सिंसियर एकदम भगवान के विषय में, हाँ चापलूसी नहीं करना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इधर भी हाथ उधर भी हाथ, भगवान के द्वारा कृपा होगी तो पैसा भी मिलेगा, प्रमोशन भी होगा, इस तरह की चापलूसी नहीं करना है। सिंसियर मतलब प्रामाणिक हृदय से जो भगवान को चाहता है उसको ना हर समय, मेरा ऐसा अनुभव है, आपको भी आएगा आगे, हर समय हर यात्रा में अगर आप वहीं भी जाएंगे ना उस जगह पर, फिर भी नई नई जगह भगवान दिखाते रहते, ये बड़ी कृपा है भगवान की। जगन्नाथपुरी जाओ, अभी हम लोग 3 बार जा चुके हैं यात्रा लेकर, मैं कई बार जा चुका हूं, लेकिन हर बार जगन्नाथपुरी में एक नए स्थान का दर्शन होता है जो पहले देखा नहीं था। वृंदावन में 50 बार जा चुका हूं, लेकिन हर बार एक नए स्थान का दर्शन भगवान कराते, तो पता पड़ा था पहले लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। वैसे उड़पी भी कई बार आए हैं, बचपन से आते हैं, हमारा गांव है ये, हमारे माता पिताओं का गांव है, तभी भी आके दर्शन किया था और थोड़ी बहुत कथा सुनी थी। लेकिन आज भी आपको आश्चर्य होगा, मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ और आप लोग भी आए हैं, कृपा है भगवान की। क्योंकि तो भगवान जैसे अनंत है वैसे उनका धाम भी अनंत है। आप कभी भी कह सकते नहीं हो मेरा उड़पी धाम हो गया है, मैं सब कुछ देख चुका हूं, ऐसे कभी नहीं बोल सकते। जितनी बार आएंगे, जितनी बार इच्छा रखेंगे, भगवान अपने घर का एक और दुकान खोलेंगे और आपको दिखाएंगे, ये और एक कमरा है इसको भी देख लो। भगवान जैसे अनंत है, भगवान का धाम भी अनंत है। ऐसे हजारों जन्म लेंगे ना तो भी पृथ्वी पर जो भगवान ने प्रकट किया वो भी हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, उसके बाहर की बात तो छोड़ ही दो। तो सब लोग हाथ जोड़ो और भगवान को धन्यवाद करो, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको इस जगह पर लाए और आपने कृपा किया। तो इसका संक्षेप इतिहास ऐसा है, इस जगह का नाम है यरमाल। यरमाल का अभी मैंने सुन रहा था, मैं थोड़ा सा थोड़ा बहुत समझ में आया वो बता रहा हूँ, आगे जाके और बताऊँगा जब आगे समझ में आएगा। कामिनी नाम की नदी जो है वो पूर्व पश्चिम बहती है, यहाँ पर बहुत नदियाँ हैं। किस किस को याद करेंगे आप, मैंने कहा था ना 10-10 मिनट में बस में और ट्रेन में बैठेंगे एक बड़ी विशाल नदी आएगी। हर एक नदी का एक इतिहास है, पता नहीं कब सब नदियों का इतिहास समझ में आएगा। हर एक नदी पवित्र है, ऐसा नहीं कि खाली गंगा नदी पवित्र है, जमुना पवित्र है, हर एक नदी पवित्र है जो अद्भुत तरीके से पहाड़ से उत्पन्न होती है। उसके आगे दिखता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन वहाँ से आ रहा है, गोमुख तक हम जा चुके हैं, ऐसा पानी आ रहा है जैसे कि कोई बाढ़ आई हो, लेकिन कहाँ से आ रहा है पीछे से पता नहीं है, स्वयं स्फूर्त है वो। उसी तरह से कामिनी नदी यहाँ पर बह रही है, और कहते हैं कि कामिनी नदी के पूर्व पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी के पूर्व पश्चिम, क्यों पश्चिम में समुद्र है, पूर्व से आ रही है और पश्चिम में समुद्र में मिल रही है, तो बीच में ये जगह अपने आप प्रकट हो गई है भगवान की इच्छा से। ऊंची जगह, हाईली पोजिशनड प्रकट हो गई है, इसलिए उसका नाम है यरमाल, मतलब जो ऊपर आ गई है, जमीन के स्तर पे ऊपर आ गई है। और यहाँ पर फिर कई संतों का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत लोग जो भगवान के भावुक भक्त थे उन्होंने फिर यहाँ पर मंदिर बनाया। और ये समय और मध्वाचार्य का समय एक ही समान था, मराठी में कहते सांप्रत, यानी उसी समय मध्वाचार्य भी थे यहाँ पर उडुपी देश में और ये मंदिर भी प्रकट हुआ। तो उन्होंने मध्वाचार्य को विनती किया कि यहाँ पर आप कृपा करके भगवान के विग्रह स्थापन करो। तो जो मैंने आपको कल कथा बताई थी ना, वो चंदन के गोले में भगवान प्रकट हो गए, उसी चंदन के गोले के साथ में एक और कृष्ण प्रकट हो गए, केवल कृष्ण बलराम नहीं, यहाँ की जो मूर्ति है वो भी उसी चंदन से प्रकट हुई है। इसको आदि, क्या नाम है इसका, आदि जनार्दन। तो जैसे उन्होंने वो मूर्ति वहां पर स्थापन की, वो दूसरी मूर्ति जो है वो यहां पर स्थापन की, और मध्वाचार्य ने स्वयं स्थापन करने के वजह से इस जगह को प्रति उडुपी कहा गया है। जितना महात्म्य उडुपी का है उतना ही महात्म्य इस जगह का भी है, इसलिए इस कृष्ण का नाम रखा गया है यरमाल कृष्ण, यानी जो कृष्ण जमीन कामिनी नदी के अंदर से जो जमीन ऊंची प्रकट हुई है उसमर प्रकट हो गए है यरमाल कृष्ण। और उसका और एक नाम है आदि जनार्दन। शास्त्रों में भगवान के 24 अलग अलग अवतारों का वर्णन किया गया है। अब ये भागवत पढ़ेंगे ना, भागवत में क्या नहीं है, भागवत में सब कुछ दिखा गया है। जीव के कल्याण के लिए क्या सुनना जरूरी है, वैसे तो शास्त्र अनंत है, भागवत के यहाँ सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मिनिमम सुनना ही चाहिए, उतना सुनना है, तो आप श्रीमद् भागवत पढ़िए। और श्रीमद् भागवत ये वेदों के वृक्ष पर आया हुआ सबसे आखिरी फल है, यानी वेद नाम का जो शास्त्र है, जितने भी शास्त्र हैं, वेद का मतलब क्या है, ज्ञान। तो वेद रूपी अगर आप पेड़ बनेंगे मानेंगे तो इसमें आया हुआ आखिरी फल है, इसके बाद में कोई और नहीं, नया फल नहीं आया है। और लास्ट में जो फल आता है ना, उसमें पेड़ का सारा सार छुपा हुआ होता है। अब ये पेड़ है नारियल का, इतना देखो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इसका सार किसमें है, नारियल में है, लकड़ी में नहीं है, पत्ते में नहीं है। पेड़ को क्या देना है आपको, वो सार रूप में, वो फल के रूप में आपको देता है। कोई वृक्ष फल फूल के रूप में आपको देते हैं, वो उनका सार है, अस्तित्व का मीनिंग है, उसका अर्थ है वो। वैसे वेदों के वृक्ष का सार क्या है, ज्ञान, और ज्ञान का परिपक्व फल क्या है, श्रीमद् भागवत। तो उसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया गया है, और उसमें 21वें अवतार में आदि जनार्दन का वर्णन आता है। तो वही ये आदि जनार्दन है जो 21वें अवतार के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। इसलिए हृदय से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैंने जब कैसे कल बताया ना, भगवान आते हैं स्वयं संभवामी युगे युगे, और स्वयं आकर लीला करते हैं, बहुत समय रहते हैं। जैसे हजारों साल प्रभु रामचंद्र रहे, नरसिम्हा भगवान कुछ दिन के लिए आए थे हिरण्यक्ष को मारने के लिए, फिर अदृश्य हो गए, वो अंतर्धान हो गए। प्रभु कृष्ण भगवान जो है कृष्णचंद्र, वो 125 साल के ऊपर रहे यहाँ पर, और वामन देव भी कुछ साल रहे, कुछ समय रहे। प्रभु रामचंद्र हजारों साल रहे, फिर सत्ययुग में आप देखते हैं हयग्रीव भगवान है, तो वो प्रत्यक्ष आते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, लीला करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन जब जाते हैं ना, तो जाने के बाद भी अपने विग्रहों के अनंत रूप के द्वारा बार बार प्रकट होते रहते हैं। जैसे कृष्ण के होते हुए ही वो छोटे छोटे विग्रह प्रकट हो गए, कृष्ण बलराम के महल के बाहर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए वो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भगवान का संग मिलता रहे, उसमें खंड ना पड़े। एक के बाद अगली व्यवस्था करके रखी है, जैसे कितने बालकों को आप लेकर आए यहाँ पर, घर में आप उनको भोजन कराते कि नहीं बच्चों को, और यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं ना उनके आप। अभी भी जितने बालक साथ में, उनके माताओं के बैग में बहुत सारा भोजन रखा है, बीच में रोएगा तो है उसके लिए अरेंजमेंट। तो अगर आप अपने एक दो बालकों के लिए इतना सोचते हैं, तो भगवान तो परम पिता हैं और हम सब उनके बालक हैं। वो सोचते रहते कि मैं आके तो चला जाऊंगा, मेरे बाद में क्या, तो मेरे बाद में क्या उसकी व्यवस्था पहले से करते रहते। कितने दयालु भगवान, देखो आप। और हम उन पर विश्वास तक नहीं करते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान को नहीं मानते, क्या है सब बेकार चीजें हैं, सब लोग पत्थर के ऊपर दूध डालते हैं, घी डालते हैं, इतना पैसा वेस्ट करते हैं। लेकिन श्रद्धा होगी ना तो प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। संत लोग कहते हैं कि आप वो मूर्ति नहीं हो, आप वो चित्रपट नहीं हो, आप लकड़ी नहीं हो, आप पेंट नहीं हो, आप कागज नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन साक्षात आप हो। और अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा ना, तो विग्रह आपसे बोलेंगे, आप कहेंगे क्या प्रभु जी आप बकवास करते हो। जब हमारी योग्यता नहीं है तब तक वो मूर्ति बन के रहेंगे आपके लिए, जैसे आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को आप नहीं मिल सकते कभी, आपकी योग्यता ही नहीं है, लेकिन अगर योग्यता होगी, आपने अगर कॉन्टैक्ट ढूंढ के निकाला, ठीक से प्रोसीजर फॉलो किया, तो आप प्रधानमंत्री को भी मिल सकते हैं। हमारे इस्कॉन में कई लोग मिल चुके हैं, उनको भगवद्गीता भी दे चुके हैं, तो वो नामुमकिन नहीं है। वैसे मूर्ति आपसे बात करना नामुमकिन नहीं है, अगर आप विधि पालन करेंगे, हृदय शुद्धि की, आत्मशुद्धि की विधि पालन करेंगे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो प्रत्यक्ष विग्रह आपसे बात करेंगे। हमारे और हमारे अलावा अन्य संप्रदायों के कितने ऐसे आचार्य हैं जिनसे भगवान ने प्रत्यक्ष बात की है। अभी जैसे ही वो मध्वाचार्य ने उठाया और एक गिर गया, उसमें खुल गया, तो बलराम जी ने बात किया कि नहीं उनसे कि मुझे यही स्थापन करो। फिर मध्व सरोवर में जब वो चंदन पिघल गया तो मूर्ति प्रकट हो गई, उन्होंने भी कहा यहाँ पर मुझे स्थापन करो। तो कितने कितने ऐसे अनंत उदाहरण है। तो इसलिए श्रद्धा से भगवान का सेवा करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, जिससे भगवान फिर इच्छा से आपको अपने लिए, हमारे लिए प्रकट करेंगे। तो ये हुई यरमाल कृष्ण आदि जनार्दन की कथा संक्षेप में, और भी बहुत सारा है और समझेंगे बाद में बताएंगे। देखो कितना सुंदर वातावरण है, आप देखिए इस वातावरण को भी आप ना अपने इंद्रियों से ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। हमारी इंद्रियां किस लिए दी गई है? ताकि आंखों से हम देखें, कानों से हम सुने, त्वचा से अनुभव करें वातावरण का, नाक से सूंघे और जिह्वा से टेस्ट करें। हाँ, ये पांच ज्ञान इंद्रिय हैं जिनके द्वारा हम वातावरण को ग्रहण कर सकते हैं, और वो होता है स्थूल और सूक्ष्म। आपको आंखों से दिख रहा है हाँ पेड़ है, आम के पत्ते हैं, यहाँ पर जैकफ्रूट का पेड़ है, फिर कोकोनट का ट्री है, फिर आम के है, लेकिन उसके सूक्ष्म भी कुछ चीज़ें होती हैं, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। कुछ जगह हम डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत, कुछ जगह बहुत शांत लगता है, कुछ जगह मन प्रसन्न हो जाता है, आनंद का अनुभव होता है, उसको हम डिवाइन कहते हैं, दिव्य। वैसे यहाँ पर कुछ दिव्य अनुभूति हो रही है। इसलिए कहा गया है कि भगवान का भजन जो है ना, वो जंगल, बगीचा, पर्वत, नदी का किनारा, ऐसी जगह हो सकता है। यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है, बहुत म्यूजिक बज रही है, लोग भाग रहे हैं इधर उधर, जोर जोर से बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। उनको रजोगुणी कथा जगह बताई गई है। सत्वगुणी जगह कौन सी है? देखो यहाँ पर जंगल का सान्निध्य है, उपवन यानी बगीचा है यहाँ पर, और गहराई में जाएंगे तो जंगल मिलेगा, फिर पर्वत मिलेगा, फिर नदी किनारा मिलेगा, समुद्र किनारा मिलेगा, जलाशय। हाँ, ये सारे क्या है? अनुकूल जगह है। और एक अनुकूल जगह है, जैसे कल बीच में गर्मी के अंदर छोटी जगह पे रात के समय पंखा नहीं है, फिर भी वहां पर भगवान प्रकट हो सकने वाली जगह थी। वो क्या जगह है? भक्तों का संघ। जहाँ भक्त इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। चाहे कितनी भी शोर वाली जगह हो, कितनी भी गंदी जगह हो, कितनी भी वैसी जगह हो जो हमारी पसंद में नहीं है, लेकिन जहाँ पर यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, ना हम तिष्ठति वैकुंठे, मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? नारद मुनि पूछ रहे हैं भगवान को, कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पर भक्त एकत्र होकर मेरे विषय में बोल रहे हैं या मेरे विषय में गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, गौरव कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। तो अभी आप बैठे ना यहाँ पर, आपके एकत्र होने से यहाँ पर भगवान उपस्थित हैं, क्योंकि हम उन्हीं के मंदिर में बैठे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के भक्त लोग एकत्र होकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए सारे अपने जो इंद्रिय है ना, उसको ऑन रखिए आप, और वो ऑन रख के उन चीजों को देखने का प्रयास कीजिए जो भगवान के संबंध में है, वो दिव्यता को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए आप। ट्राई टू कैप्चर डिविनिटी, ये मत देखना कि कहाँ पर कौन सा दुकान है, उधर क्या मिल रहा है, इधर स्पेशलिटी क्या है, साड़ी कौन सी मिलती है, स्वीट कौन सा मिलता है, और वहाँ पर स्पेशलिटी क्या है, लकड़ी का सामान मिलता है कि लोहे का सामान मिलता है कि पीतल का मिलता है कि और क्या मिलता है, वो भी आप आंखों से देखते हैं ना, लेकिन अपना अटेंशन जो है ना, वो इंद्रियों के द्वारा भगवान पर ध्यान पे रखिए, तब जाकर आपको भगवान दिखेंगे। आप क्या देखना चाहते हो? आंखें देखती नहीं है, आप देखते हो, सही बात है। आंख तो मशीन है आपके लिए, भगवान ने दिया हुआ। कान नहीं सुनते हैं, आप सुनते हो, कान आपके लिए मशीन दिया गया है। तो कान आपको वही सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हो। अगर को गॉसिप सुनना है तो आपको उधर ही ध्यान जाएगा आपका, क्या सुनना है, कौन क्या किया, किसका किसका क्या हुआ, किसके घर में गड़बड़ है, किसके घर में गड़बड़ हो गया, लफड़ा हो गया, जो आपको सुनना है वो कान सुनाएंगे आपको। लेकिन आपको भगवान के ऊपर सुनने की इच्छा है, भगवान की चीज देखने की इच्छा है, तो आंखें और कान आपको वही सुनाएंगे, वही दिखाएंगे। इसलिए अंदर आप निश्चय कर लीजिए कि हमको भगवान पर ही अपने आप को केंद्रित रखना है। ट्राई टू फोकस ऑन गॉड ओनली। तो ये हो गया यरमल कृष्ण का, यरमल जगह का सुंदर वातावरण, जिसको आप अपने आत्म स्तर पर अनुभव कर लीजिए। इसके आगे हम जाएंगे कटिल, जहाँ पर बैठने की और कथा करने की व्यवस्था नहीं है। तो कटिल स्थान की कथा हम यहीं करेंगे।